हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सारी सच्चाई जानने के बाद धृति कुछ पल स्तब्ध सी बैठी रही, उस फोटो को देखती रही। फिर उसने भरी निगाहों से अर्णव को देखा। दोनों के चेहरे पर दर्द का साया छाया हुआ था। जानता हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए ये शब्द बहुत छोटे हैं और एक सॉरी से कुछ नहीं बदलेगा, अर्णव बोला। न जो मैंने किया वो और न ही जो दर्द तुमने मेरे कारण सहा वो, पर फिर भी मैं एक बार पूरी ईमानदारी से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी धृति, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अर्णव ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसके चेहरे पर आत्मग्लानी, दुख, पछतावे जैसे भाव स्पष्ट दिख रहे थे। वाकई में उसने आज पूरे दिल से उससे माफ़ी मांगी थी, पर धृति खामोशी से उसे देखते हुए उसकी बात सुनती रही। अर्णव ने पूरी बात उसे बताई, उससे माफ़ी भी मांगी, फिर खामोश होकर उसे देखने लगा। तब धृति ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए अपने आंसुओं को पोंछा और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोली, एक और बार वही हुआ मेरे साथ। एक बार फिर इस चेहरे ने मुझे उस गुनाह की सजा भुगतने पर मजबूर कर दिया जो मैंने किया ही नहीं था। एक बार फिर बिना किसी कसूर के मैं कसूरवार ठहरा दी गई। सिर्फ मेरा चेहरा उस इंसान से मिलता था जिसने आपके भाई को धोखा दिया, इसलिए आपने मुझसे शादी कर ली। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने उस पर विश्वास किया जो आपकी आंखों ने देखा, तो आप गलत कैसे हो सकते हैं? आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आदत है मुझे, बचपन से यही होता आ रहा है मेरे साथ। गलती कोई और करती है और इल्ज़ाम मुझ पर आता है। गलत वो होती है और सज़ा मुझे दी जाती है। दोषी वो होती है पर कसूरवार मुझे ठहराया जाता है। मैं इसके लिए आपसे भला क्या शिकायत करूं? आप तो मुझे जानते ही नहीं थे। आपको जो दिखा और जो आपको पता चला, आपने उस पर विश्वास किया, और करते भी क्यों नहीं, वो आपका भाई था। पर मैं तो आपकी कुछ भी नहीं थी, अनजान थी आपके लिए। तो आपको मैं आपके भाई की कातिल लगी और आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का फ़ैसला कर लिया, तो इसमें गलत क्या था? सिर्फ आपने ही तो मुझे गलत नहीं समझा, सब मुझे गलत ही समझते हैं। आप तो अनजान थे मुझसे, तो नहीं पहचान सके मुझे कि जिसके लिए आप अपने दिल में नफ़रत भरे बैठे हैं वो मैं नहीं, कोई और है। आप तो दी के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे और उस पर हमारे नाम की अदला बदली, इसलिए आपसे ये भूल हो गई। पर यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, फिर भी वो कभी मुझे समझ ही नहीं सके। हर बार हर किसी ने बस मुझे गलत ठहराकर सज़ा सुना दी मुझे, बिना ये जानने की कोशिश किए कि असल में मैंने वो गलती की भी है या नहीं। इसमें किसी का कोई दोष ही नहीं, सारा दोष तो मेरी किस्मत का है, जिसमें मैं सिर्फ तिरस्कार, नफ़रत, धिक्कार, दर्द और तकलीफ ही लिखवा कर आई हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने अपने भाई के कातिल को सज़ा देने के लिए जो भी किया सब सही था, पर अफसोस कि इंसान गलत चुन लिया आपने उस सज़ा के लिए। मैं तो आपके भाई को जानती तक नहीं, मैं क्या उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? जिस लड़की ने आपके भाई का दिल तोड़ा और जिसके वजह से आपका भाई आपसे दूर हो गया, वो मैं नहीं, मेरी दी है। आपके इस नफ़रत की हकदार मैं कभी नहीं थी, दोष तो दी का था, पर उनके किए की सज़ा मेरे हिस्से आ गई। धृति ने दर्द भरी आह भरी और सोनी निगाहों से उसे देखते हुए आगे कहना शुरू किया, पता है जब से आपसे मिली हूँ और आपकी आंखों में खुद के लिए बे इंतहा नफ़रत देखी है, तब से ये सोच सोचकर मैं पागल हो गई कि आखिर मैंने किया क्या है। उस नफ़रत के पीछे छुपे दर्द को महसूस किया है मैंने, इसलिए बिना अपना गुनाह जाने मैं खामोशी से आपकी दी हर सज़ा को भुगतती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आप मुझसे इस कदर नफ़रत करते हैं, अगर मेरी वजह से आप इतने दर्द में हैं, तो जाने अनजाने ही सही, पर मैंने ऐसा कुछ किया होगा जिसके वजह से आप मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं। इन बीते 4-5 महीनों में मैं सोच सोचकर थक गई, पर मुझे आपकी नफ़रत की वजह समझ ही नहीं आई। इतनी बार पूछा मैंने आपसे कि जब सज़ा सुना चुके हैं मुझे, तो मेरा गुनाह तो बता दीजिए, पर आपने अपना मुंह नहीं खोला और मुझे दर्द देते गए। आज आपको एहसास हो रहा है कि आपने तो गलत इंसान को अपनी नफ़रत के लिए चुन लिया, तो आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, पर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बीते महीने मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे महीने थे जिन्हें मैंने आपके साथ बिताया है। मैंने बिना किसी गुनाह के आपकी नफ़रत और ह्यूमिलिएशन को सहा है। इतना दर्द दिया आपने मुझे, पर मैंने उफ तक नहीं की, क्योंकि आपकी नफ़रत देखकर मुझे भी लगने लगा था कि मैं आपकी नफ़रत के ही लायक हूँ। गलत हूँ मैं, ये मान लिया था मैंने, पर नहीं थी मैं गलत। मेरे वजह से आपका भाई आपसे दूर नहीं गया। मैं नहीं हूँ आपकी और आपके भाई की गुनाहगार। मैं नहीं हूँ दोषी, नहीं हूँ मैं आपकी नफ़रत की हकदार। नहीं डिज़र्व करती थी मैं ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी जो आपने मुझे दी, पर मैं इसकी आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, पर गलत मैं भी नहीं थी, या शायद मैं गुनाहगार थी आपकी, क्योंकि जिसके वजह से आपका भाई छिन गया वो मेरी ही बड़ी बहन है, पर उन्होंने जो किया उसकी सज़ा मुझे क्यों? गलत मैं नहीं वो थी। आपको उनसे नफ़रत करनी चाहिए थी, पर आपने मुझसे बेइंतहा नफ़रत की। आपको उन्हें सज़ा देना था, पर वो सज़ा मैं बेगुनाह होते हुए भी आज तक खामोशी से भुगत रही हूँ। पर अब बस, अब और नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। अब तो आपको पता चल गया कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो मुझे आज़ाद कर दीजिए नफ़रत से जुड़े इस रिश्ते से। धृति का चेहरा दर्द से सना हुआ था। उसने खामोशी तोड़ी तो ऐसी बहुत सी बातें बोल गईं जो उसने आज तक नहीं कही थीं। अर्णव खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा, जिसमें उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा, बेबसी, लाचारी और वेदना झलक रही थी जो उसने सहा था। उसके गुलाबी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्णव समझ रहा था उसकी स्थिति, इसलिए खामोशी से उसकी बात सुन रहा था ताकि धृति अपना दिल हल्का कर ले, कोई बात अपने अंदर ना रखे। पहले तो अर्णव शांति से उसकी सारी बातें, शिकायतें सुनता रहा, पर जैसे ही उसके आखिरी के शब्द उसके कानों में पड़े, अर्णव के भाव एकदम से बदल गए। वहीं धृति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहना शुरू किया, आपको आपके भाई के कातिल को सज़ा देनी थी, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाना चाहते थे, तो अब तो आपको पता चल गया है कि मैं असली गुनाहगार नहीं हूँ, तो अब मुझे इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से आज़ादी दीजिए, इस दर्द से छुटकारा चाहिए मुझे। नहीं सही जाती अब मुझसे आपकी ये बेवजह की नफ़रत, नहीं बर्दाश्त होता पल पल मिलने वाली ह्यूमिलिएशन, दम घुटता है मेरा यहाँ। अगर मैं अब और यहाँ आपके साथ रही तो आपका पल पल बदलते मूड और रवैया मुझे पागल कर देगा। नफ़रत करते थे ना आप मुझसे, इसलिए ज़बरदस्ती मुझसे शादी करके मुझे यहाँ कैद करके रख लिया। तो अब तो आप जान चुके हैं कि मुझसे आपकी नफ़रत बेबुनियाद थी, तो अब मुझे इस नफ़रत से जुड़े रिश्ते से आज़ाद कर दीजिए। अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझे, मुझे आज़ादी चाहिए इस ज़बरदस्ती के जुड़े रिश्ते से। मैं दूर जाना चाहती हूँ आपसे, इतना दूर कि आपकी परछाई भी मुझ तक न पहुंच सके। बहुत दर्द दे दिया आपने मुझे और बहुत जिल्लत सहली मैंने। अब मैं सुकून से चंद सांसें लेना चाहती हूँ। आपने मेरी जिंदगी को बोझ बनाकर रख दिया। ठीक कहा था आपने कि आप मेरा वो हश्र करेंगे कि मैं न जी पाऊंगी न मर पाऊंगी। नहीं जी पा रही मैं आपकी इस नफरत के साथ, और आपकी परवाह मुझे मौत भी नहीं आने देती। पर अब तो वो वजह ही खत्म हो गई जिसके वजह से आपने मुझे यहाँ कैद किया हुआ था, तो मुझे अपने इस सोने के महल से, इस जबरदस्ती के जुड़े रिश्ते और अपनी नफरत से आज़ादी दीजिए। अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझे, मुझे आज़ादी चाहिए इस जबरदस्ती के जुड़े रिश्ते से। मैं दूर जाना चाहती हूँ आपसे, इतना दूर कि आपकी परछाई भी मुझ तक न पहुंच सके। बहुत दर्द दे दिया आपने मुझे और बहुत जिल्लत सहली मैंने। अब मैं सुकून से चंद सांसें लेना चाहती हूँ। आपने मेरी जिंदगी को बोझ बनाकर रख दिया। ठीक कहा था आपने कि आप मेरा वो हश्र करेंगे कि मैं न जी पाऊंगी न मर पाऊंगी। नहीं जी पा रही मैं आपकी इस नफरत के साथ, और आपकी परवाह मुझे मौत भी नहीं आने देती। पर अब तो वो वजह ही खत्म हो गई जिसके वजह से आपने मुझे यहाँ कैद किया हुआ था, तो मुझे अपने इस सोने के महल से, इस जबरदस्ती के जुड़े रिश्ते और अपनी नफरत से आज़ादी दीजिए। एक बार फिर धृति ने वही बातें कहीं, जिसे सुनकर अर्णव के चेहरे पर सख्त भाव उभर आए और भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। कहना क्या चाहती हो तुम? टू बी कंटिन्यूड।